ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரம்ம விஜயான கேந்திர ஸ்ரீ கைலாசாசிரமிக்கு பஞ்சமி பீட்டாதீஸ்வர பிரம்மலீன சுவாமி பிரேம்புரி மகாராஜி கே சம்ஸ்மரண் சே சம்ஸ்தாபித ய அத்தியாத்ம வித்யாபவன மும்பை மே பிராத சுவாத்திய பிரவச்சன காரியக்கிரம மே விசேஷ காரியக்கிரம அபி சாந்தோக உபனிஷத் ஜான யஜ்ஞ சம்வர்க வித்யா அபி அந்திம தோ மந்திர பாக்கி. ஜப பிரம்மச்சாரி அப்படி கோ சம்வர்க மான கர்க்கே வாயு பிராணாத்மக சம்வர்க பிக்ஷா மே பிக்ஷா நீ தினசே கா ஜிஸ்கே லே அன்ன போஜன பக்காதே அன்ன தியா தவ ததுஹ சௌனக காபிய பிரதிமன்வான பிரத்யாய ஆத்மா தேவானாம் ஜனிதா பிரஜானாம் ஹிரண்யதன்ஷ்ட்ரு பவசுவன சுரிர் மஹாந்தம் அஸ்ய மஹிமானம் ஆஹுர் அநத்யமானு யதனன்னமத்தீதி வைவமியம் ப்ரஹ்மச்சாரின் நேதமுபாஸ்மஹே தத்தாஸ்மை பிக்ஷாமிதி. भिक्षा मांगने से दो सौनक और अभिप्रतारी भिक्षा नहीं देकर के सुन रहे थे ब्रह्मचारी क्या कह रहा है. तो ब्रह्मचारी ने कहा संवर्ग विद्या में उसकी निष्ठा थी का चार महात्मा को एक निगल लेता है, प्राण निगल लेता है चक्षु आदि चार को और वायु आदि प्राण वायु नहीं लेता है अग्नि आदि देवता को. इसको जो प्रजापति है सारे भुवन की रक्षा करने वाले हे कापेय हे अभिप्रतारिन इसको लोग नहीं जानते हैं, बहुत प्रकार स्थित है, इसके लिए अन्न नहीं देते हैं. तो कहते शौनक कापेय और कहते तदो शौनक कापेय प्रतिमन्न सुन करके प्रति ए आय प्रास में आया कहते तुम जिसको कहते नहीं जानते ये नहीं हम जानते हैं. कैसे जानते हैं? आत्मा सर्वे सब का स्थावर जंगम का आत्मा है, देवानाम जनिता और देवताओं का भी जनिता, अग्निवायुवादि का और चक्षुरादि का सबको जनक है, उत्पन्न करता है, सबको ग्रास करता है फिर उत्पन्न करता है उत्पत्ति करता है. हिरण्यदंश प्रजानाम सारे प्रजाओं का भी स्थावर जंगम सब का ही जन्म करने वाला उत्पन्न करने वाला. हिरण्यदंश हिरण्य के समान उसका दंश है दांत है, इसका अभग्न दंत दांत नष्ट नहीं होती, सब को खाने वाला. भवसह का है तो भक्षणशील, सारे जगत को अपने में समेट लेने पर भी कुछ नहीं होता है, सब भवस भक्षणशील. अनसूरी सूरी है मेधावी, असुर्य ने अनसूर्य अत्यंत मेधावी है. महांतम अस्य महिमानम आहु इसकी महिमा को बहुत प्रजापति की महिमा विभूति है, बहुत बड़े महा विभूति है इसे ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं. क्या उसकी महिमा है? अनद्यमान यद अनन्नमत्ति थी, स्वयं किसके द्वारा नहीं खाया जाता, अद्यमान नहीं स्वयं अन्न नहीं होता है उसको कोई नहीं खा सकते और वो सबको खाता है. यहां तक अनन्न को अनन्नमत्ति अन्न को तो सब खाते हैं, अन्न से भिन्न इनको भी ग्रास कर लेता है, अग्नि आदि देवता को भी ग्रास कर लेता है, इसलिए इसकी महिमा बहुत अधिक है. इति वेई हे यह वयम ब्रह्मचारिन इदम उपासमय, हे ब्रह्मचारिन वयम इदम उपासमय हम इसकी उपासना करते हैं. भाष्य में दूसरे प्रकार व्याख्यान क्या है? ब्रह्मचारिन नेदम उपासमय है, पहला तो हम जानते हैं इसकी हम उपासना करते हैं, दूसरे में हम इसको जानते हैं किंतु इसकी उपासना हम नहीं करते, हम तो परब्रह्म की उपासना करते हैं. ये तो प्रजापति है हिरण्यगर्भ है, हम तो परब्रह्म की उपासना करते हैं. इसे भाष्य में दूसरे प्रकार भी है. दत्त अस्मय भिक्षाम और कहा इसको भिक्षा दे दो, प्रत्यादि कह दे इनको ब्रह्मचारी भिक्षा दे दो. तस्मा उह दुस्ते वे पंचान्य पंचान्य दश संतस्तत्कृतं तस्मा सर्वासु दीक्षुअन्नमेव दश कृतं चैषा विराट नादि तैदम सर्व दृष्टम सर्वमस्यदम दृष्टम भवत्यन्नादो भवति एवं वेद एवं वेद तस्मै ह ददु। श्री ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दे। तेवाय ते पंचाने पंचाने दस पांच पांच दस हो चार को खाना महात्मा न चतुर एक ही खाने ग्रास करने वाले प्राणवायु ग्रास करने वाले अध्यात्म देह के अंदर चक्षुरादि को और बाहर प्राण अग्नि आदि को चक्षु श्रोत्रम चक्षु वाघ चक्षु श्रोत्र और मन और बाहर वायु चार देवता को ग्रास करने वाले चार देवता है कौन है अग्नि नहीं वायु तो ग्रास करने वाला हाँ सूर्य चंद्र अग्नि और हाँ जल जल के है हाँ जल हाँ तीन है जल वाला रखा है अग्नि सूर्य चंद्र जल ये तीन को ग्रास करने वाला कौन है वायु हुआ कितने को ग्रास करने वाला हुआ चार को ग्रास करने वाला वायु कितने हो गए पांच अब प्राण भी चार को ग्रास करता है वाक चक्षु श्रोत्र मन कितने को ग्रास करता है और ग्रास करने वाला प्राण मिलकर कितने हो गया पांच एते पंचान्य पंचान्य जिनको ग्रास किया जाता है और जो ग्रास करने वाले ये पंच हो गए अन्य अध्यात्म देह में और पंचान्य बाहर भी ग्रास करने वाला वायु और अग्नि आदि को ग्रास करता है वो पांच हो गए मिल करके दस हो गए दस संत तत्कृतम ये दस को कृत कहते हैं कृत संज्ञ कहे तस्मा सर्वासु दीक्षु अन्नम एव सारे दिशा में अन्न उसका है सब भोग्य हो जाते हैं दस कृतम शेषा विराट विराट है विराट दशाक्षरा विराट छंद भी है और विराट है समष्टि स्थूल प्रपंच अभिमानी और विराट को अन्न भी कहते हैं शेषा विराट अन्नादि अन्नादि अन्न को सब को अन्न को ग्रहण करने वाला अन्नादि है दस संख्या हो गया अन्न अन्नादि है तया इदम सर्वं दृष्टम ये सबको ही जानने वाला सब उसको ज्ञात है सर्वं अस्य दृष्टम सर्वं अस्य इदम दृष्टम भवति और जो इस चीज की उपासना करता है सब उसका ज्ञात हो जाता है अन्नाद भवति और अन्नमति तो अन्नाद दृप्ताग्नि सब उसका अन्न हो जाते हैं यह एवं वेद यह एवं वेद दोनों प्रकार अभ्यास विरुक्ति है यह संवर्ग उपासना समाप्ति के लिए यह संवर्ग हो गया समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ उसको प्रजापति रूप से कहा गया व्यष्टि में प्राण और समष्टि में वायु वायु प्राण एक होकर के समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ अहम अस्मि से अहम ग्रह उपासना करने पर फल प्राप्त होता है स्वयं उसे विराट रूप को प्राप्त हो जाता है हिरण्य गर्भ रूप हो जाता है अभ्यास में जिस प्रकार जितने तन्मयता होकर के उपासना करता है इतना अधिक फल प्राप्त करता है हिरण्य गर्भ रूप हो जाता है और यदि फल की इच्छा नहीं करके उपासना करे ये उपासना सब में श्रेष्ठ उपासना अहंग उपासना यह अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है जितने कर्म उपासना सब ज्ञान प्राप्ति का साधन है और यह जो अहंग्रह उपासना यह अति उत्कृष्ट है क्योंकि भेद दृष्टि से उपासना करने वाले को बाद में अवैध चिंतन करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है जो पहले अहंग्रह उपासना करता है समष्टि प्राण में हूँ समष्टि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड अधिपति ब्रह्मांड और प्रजापति विराट में हूँ ऐसे चिंतन करने वाले सबका अधिष्ठान चैतन्य में हूँ चिंतन करने के लिए सरल होता है अहंग्रह उपासना सारे उपासना में श्रेष्ठ है अहंग उपासना करने वाले को तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और फल की इच्छा नहीं होने पर वही अहंग उपासना करते करते वही ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान हो जाता है सत्य कामोह जाबालो जबाला मातरम आमंत्रयान चक्रे ब्रह्मचर्य भवती विवत्स्यामी किं गोत्रन वहमस्मीति जबाला का पुत्र है माता का नाम जबाला पुत्र को कहते जाबाल हो गया नाम थे सत्यकाम सत्य काम उसका नाम सत्य सत्यम काम यश सत्य को ही चाहने वाला सत्य में निष्ठा है नाम के अनुसार नाम तो सत्य काम उसका अर्थ भी है। मातरम आमंत्रया चक्रे कुछ उम्र हो गया तो माता से लड़का बोलता है उसके पिता समाप्त हो गए थे लड़का माता से बोलता है ब्रह्मचर्य भवति व्यवसामी माता में ब्रह्मचर्य गुरुकुल में जाकर के वास करना चाहता हूँ जाकर के अध्ययन कर वेदाध्ययन करो किंग गोत्र नु हम अस्मी थी गुरुकुल में जाएंगे तो गोत्र पूछेंगे तो कैसा क्या मेरा हमारा गोत्र है किंग गोत्र नु हम अस्मी थी पिता और माता दोनों एक गोत्र में विवाह नहीं होता है पिता का जो पुत्र का विवाह करते हैं कन्या लाते तो समान गोत्र कन्या को नहीं लाते भिन्न गोत्र होना चाहिए समान गोत्र में दोनों हो तो पति पत्नी नहीं होता है किंतु विवाह होने के बाद पिता के गोत्र ही पुत्र का गोत्र होता है पत्नी का भी उसमें आ गया और अपने पिता माता का जो गोत्र उसको छोड़ करके इधर आ गई क्योंकि कन्यादान होने पर पिता पति के अधीन हो गया गोत्र होगा पिता का गोत्र पुत्र का इसलिए माता से पूछा मेरा गोत्र क्या है जवारा का हो सकता है उसके पिता माता का गोत्र मालूम है किंतु गोत्र किसका होगा जो सत्यकाम के पिता का जो गोत्र वही गोत्र होगा तो क्या गोत्र में हूं ये पूछा सा हे नमुवाच ना हमे तद वेद तात यद गोत्रस्तमसी बहु अहं चरंती परिचारिणी यौवने तामलभे साहमेत न वेद यद गोत्रस्तमसी जवाला तु नामाहमस्मी सत्यकाम नाम तमसी स सत्यकाम एव जावालो ब्रुवीथा इति सा जवाला मात्रा ने कहा एनम पुत्र को नाहम एतद वेद तात पुत्र को तात कहते तात तो पिता को कहते प्रेम से पुत्र कहते हैं तात एत न वेद मैं तो नहीं जानती हूँ तुम्हारे यद गोत्रस्तमसी तुम जिस गोत्र का हो मैं नहीं जानता हूँ क्यों नहीं जानते कैसे स्वयं अपने कहती माता बहु अहम चरंती परिचारिणी आपके पिता के पास इसे बहुत आते थे अभ्यागत अतिथि अतिथि के उनको भोजन बनाना सेवा करना इसमें बहुत सेवा करते हुए समय नहीं होता था यौवने त्वाम अलभ है विवाह के कुछ दिन के बाद यौवन अवस्था में तुमको प्राप्त किया और उसके बाद तुम्हारे पिता समाप्त हो गए साहम इतना न वेद कभी समय नहीं मिला पिता से तुम्हारे पिता से पूछने के लिए गोत्र क्या है गोत्र आदि की संस्मरण क्योंकि सेवा में करते करते पहले तो ऐसे होता है जितने धन संपत्ति होने पर भी ये कोई अतिथि आने थे तो गृह लक्ष्मी गृह गृहिणी स्वयं भोजन बना करके सेवा करना एक अतिथि सेवा भी परमात्मा की पूजा के समान पंच महायज्ञ में आया तो स्वयं सेवा करते स्वयं करना चाहिए इसे करते थे तो इतने सेवा में लगे बहुत अतिथि रोज रोज अतिथि तो आते हैं तो गृहस्थ खुश होते हैं खुश होना चाहिए खुश होकर उनको इनकी सेवा करके खिलाए तो उनके पति विद्वान थे उनके पास इसे आते थे अन्य सब ब्राह्मण तो उनकी सेवा करते थे और भोजन आदि बनाना खिलाने करते करते कभी समय नहीं मिला पूछने के लिए और बाकी उसके पिता समाप्त हो गए तब तो गोत्र मालूम नहीं है यौवने तो अलभ है साहम एतर न वेद मैं नहीं जानती हूँ यद गोत्र समझते हूँ जो गोत्र हो मैं तो इतने ख्याल जानती हूँ जवाला तो नाम अहमसमी मैं जवाला मेरा नाम जवाला है और सत्यकाम नाम तमसी तुम्हारा नाम सत्यकाम पिता ने रखा होगा उसका नाम पिता को नाम रखना होता है सत्यकाम तुम हो तो तुम गुरुकुल में जाओ तो ही बता देना सत्यकाम एव जावालो ब्रुवीथा जो गुरु पूछेंगे तो बोलना कि मैं सत्यकाम हूँ मेरा नाम जावालो क्योंकि माता का नाम जवाला उसके पुत्र होने से मेरा नाम जवाला हो गया इतने ही बोलना स हरिद्रुमतम गौतम मेत्युवाच ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्यामी उपेयाम भगवंतमिति तं होवाच किंग गोत्र नुसम्यासीति सहवाच नाहमेतद वेद भो यद गोत्रहमस्म्य पृच्छं मातरम् सा मा प्रत्यव्रवीत बहु अहं परिचरन्ति परिचारिणी यौवने तामलभे साहमेतन वेद यद गोत्रस्तमसी जवाला तो नाम अहमस्मी सत्य कामो नाम त्वमसीति सोहम सत्य कामो जावालो अस्मी भो इति हरिद्रुमतम। हरिद्रुमत है पिता का नाम, उनका पुत्र का नाम हो गया हरिद्रमुत। हरिद्रमुत हरिद्रुमत के पास गए, गौतम है गौतम, गौतम गोत्र से उत्पन्न है, गौतम नाम है। हरिद्रुमत के पास गए, एत्य जा करके उनसे प्रार्थना कर कहा ब्रह्मचर्यम भगवती वत्स्यामी, आपके पास में ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ। अभ्युपेयाम भगवंतम, मैं शिष्यत्व आपके पास समर्पित हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपसे वेद अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य वास करना मतलब शिष्यत्व में रहना, सेवा करना, आज्ञा पालन करना और वेद अध्ययन करना। तम होवाच किं गोत्र अनुसम्य आसीति, तो कहा है सम्य तुम क्या गोत्र वाला हो, क्या तुम्हारा गोत्र है। इति से पूछा अस सत्य काम ने कहा सहोवाच नाहा में तद भो संबोधन मैं नहीं जानता हूँ। क्या गुरु यद गोत्र हम अस्मी, जो गोत्र वाला मैं हूँ, मेरा गोत्र क्या नहीं जानता हूँ। आचार्य कहेंगे जाओ फिर पूछ कर आओ। इसे स्वयं बोलता है अपृछ मातरम, माता से मैंने पूछा था आने के पहले। सा माँ प्रत्यव्रवीत, और माता ने मुझे इसे कहा, जैसे कहा था इसे बता दिया। बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवनताम अलभे, बहुत की सेवा करती थी परिचारण सेवा करने वाले, बहुत भोजन आदि खिलाते समय, समय नहीं उनसे पूछा नहीं था। यौवनताम अलभे, युवावस्था में तुमको प्राप्त किया था, और वो आगे नहीं कहते पिता समाप्त हो गए थे, नहीं पिता होते तो अभी उनसे पूछ रहे, तो यौवन प्राप्त किया, पिता समाप्त हो गए, और कभी तुम्हारे गोत्र के विषय में कभी पूछा नहीं था। साह में तो न वेद, तो कहा गोत्र में नहीं जानते, इसे बताया यद गोत्र तमसी, तुम जिस गोत्र के हो नहीं जानता हूँ। और माता ने इसे कहा जवाला तो नाम अहम अस्मी, नहीं माता ने इसे बताया जवाला है मैं सत्य, असत्य काम नाम तमसी, मेरा नाम जवाला, तुम सत्य काम हो, ऐसे माता ने मुझे बताया था। यदि और मुझे कहा था ऐसे ही गुरु आचार्य कहने के लिए कहा था, यदि सोहम सत्य काम जावालो अस्मी भो इति, मैं सत्य काम मेरा नाम और जवाला का पुत्र हूं, से जावाला कहते इतने मुझे मालूम, मैं तो सत्य काम जावाला हूँ। तम होवाच नहीं तद अब्राह्मण भी वक्तुम अर्हति समिध सम्याहार उपोत्वाने से न सत्यादगायति, तम उपनीय कृषा नाम अभला नाम चतुशता का निराकृत वाचिमा सम्य अनुसंब्रजेति ता अभिप्रस्थापयन वाच न सहस्रेणावर्ते इति सह वर्ष गणम प्रोवास ता यदा सहस्रम संपेदुः। तम होवाच आचार्य गौतम हरिद्रुमत ने देखा, ये बिल्कुल साफ साफ ऐसे बता दिया जैसे माता ने कहा था, तो देखे इतने तम वाच नहीं तो अब्राह्मण विभक्त मरती, इतने सरल ब्राह्मण स्वभावतः सरल होता है, एक सरलता दैवी संपत्ति है। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमार्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवद भज, क्षमा आर्जव क्षमा सहिष्णुता सहन करना, आर्जव है सरलता, अष्टावक्र गीता में पहले आता है। जनक जी कहते मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज, विषयों का त्याग कर, विश्व के जैसे भूख लगती भोजन सामने है, मालूम हो गया ऐसे में विषय मिला हुआ है, तो पेट भर खाओगे आधा खाओगे चौथाई थोड़ा सा भी नहीं, इसी प्रकार कहते विषयम विषव त्यज, विषय जैसे त्याग करो, अर्थात जितने आवश्यक बहुत शरीर धारण के लिए उससे अधिक विषय ग्रहण नहीं करना चाहिए, विषव त्यज। अब विषव त्यज करे और फिर क्या ग्रहण करेंगे, अमृत जैसे सेवन कर, क्षमा जव दया तोषम सत्यम पीयूषवद भज, क्षमा सहिष्णुता, कोई कुछ कहता है कष्ट देता है कटु वचन क्या तो सहन कर लेना, अशीत द्वंद्व आदि सहन करना, क्षमा आर्जव सरलता, सरल साफ साफ सत्य। कुछ लोगों को स्वभाव से टेढ़ापन होता है, कुटिलता, वो अच्छा गुण नहीं है। सरलता लोक में भी जो टेढ़ा है उसका अच्छा नहीं मानते, जो सरल सरल होता है अच्छा होता है, ये एक सप्त दैवी संपत्ति है। क्षमार्जव दया सब के भूत मात्र दया, और के संतोष तोष संतोष भी एक है परम निधान का, संतोष एव पुरुषस्य परम निधान, सबसे बड़ी निधि संपत्ति है। जो संतुष्ट नहीं होता है, जितने मिलने पर ही और चाहिए, और मिला तो और चाहिए, और जो संतोष है स्वल्प प्राप्त होता है उसमें संतोष है, हमारे भाग्य में जो है ठीक है, पर्याप्त है। इसे देखे ज्यादा नहीं थोड़े से हो संतोष है, बहुत चिंता नहीं, ज्यादा क्या करेंगे करेंगे, छोड़कर जाना है, थोड़े भगवान का भजन करते बस, ज्यादा जरूरत नहीं। संतोष एक वर्ष सबसे संपत्ति, जो संतोष है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे कर्म में भाग्य में जितने इतने मिलता है, और किसके पास अधिक है तो उसके पुण्य है, मिला ठीक है, हमारे आप कम है, जितने मिला ठीक है, उसके अनुसार चलाना है। चलने वाले चलाते, दुखे दुखाधिकान पश्चि सुखे पश्चि सुखाधिकान, सुख संपत्ति अधिक होता तो गर्व करके बड़े नाचने लगे, हम बड़े सुखी, सुख प्राप्त होते अधिक सुख वाले को देखो, धन हो गया गर्व आता है, देखो तुमसे ही बड़े बड़े धनी है, तुम्हारे पास कोई ज्ञान धन संपत्ति कुछ है तो तुमसे अधिक वाले है, इसलिए गर्व नहीं करना। और दुख मिलता है देखो तुम जितने दुख प्राप्त करते हो तुमसे भी अधिक दुखी कोई है, सब कहते मैं बड़ा दुखी, तुमसे भी दुखी बहुत है, दुख मिलता है तो तुम सोचो तुमको जितने प्राप्त है उससे भी कितने काम लोग, इतने भी नहीं। छोटे झोपड़ी कुटिया किसके पास है, वो कहते हमारे पास झोपड़ी कुटिया है कुछ नहीं, बड़े बड़े मकान है, तुम्हारे पास झोपड़ी कुटिया है ऐसे कितने लोग है, इसे झोपड़ी भी उनके पास नहीं, तुम्हारे पास पुराने फटे कुछ कपड़ा है कितने लोगों के पास ये भी नहीं है, तुमको सुखी रुखी सुखी भोजन मिल जाता है कितने लोग उसको भी नहीं प्राप्त करते, और कितने लोग भोजन प्राप्त कर लेते किंतु कितने रोगी दुखी है, इसे तुम जितने दुखी उससे और दुखी बहुत है, दुख से अन्य दुखी को देखो, देखकर जो प्राप्त है अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार संतोष होना चाहिए। सुख दुख तो सबको मिलता है, अपने को सुख दुख जितने मिलता है समझ लीजिए मेरा कर्म, उसको सहन करना है, संतोष रहना है। संतोष क्षमार जब दया तोषम सत्यम, सत्य एक बड़ा साधन है, अश्वमेध सहसंच सत्यंच तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्रात्व सत्यम एकम विशिष्यते, 1000 अश्वमेध यज्ञ का जितने फल उससे बढ़ करके एक सत्य का, सत्य भाषण बड़ा, जितने कभी प्रमाद से मिथ्या शब्द निकल जाए तुरंत उसको मार्जन करे, बाद में बता दे काली से झूठ बोल दिया किन्तु ऐसा सत्य है, ऐसे अभ्यास करे सत्य भाषण करना, ये होता है दैवी संपत्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए इसको अमृत जैसे सेवन कर, उसमें एक सरलता है। तो ये देखा बालक है, ये इतने सरल साफ कह दिया कि क्या उत्तर मुझे मालूम नहीं, माता जी ने पूछा और माता जी ने इसे कहा, माता जी से पूछा, माता ने इसे कहा था कि बहुत सेवा करती थी, जब आप तुमको प्राप्त किया था तुमको गोत्र तुम्हारे गोत्र क्या मालूम नहीं, मैं तो जावाला हूँ, तुम्हारा नाम सत्य काम है, तो ये भी बता दिया मैं सत्य काम जावाला हूँ। तो गुरु देखते कि ये तो अब्राह्मण विभक्त तो न रहती, ब्राह्मण से बिना ब्राह्मण स्वभावतः सरल होते हैं, होना चाहिए, किंतु अन्य को इतने सरल नहीं होगा, थोड़े थोड़े काम सरलता है। तो ये कहा तो ये जरूर ब्राह्मण है, समिधम सम्य आहार हे सौम्य ले आओ, समिधि ले आओ, तुमको उपनयन करूंगा, क्योंकि उपनयन करके ही वेदाध्यापन अध्यापन किया जाता है, कोई आने पर यज्ञोपवीत संस्कार करके फिर वेद पढ़ाते हैं। ब्राह्मण लड़का हो तो भी अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापित, ब्राह्मण क्षेत्र विषय उनका उपनयन संस्कार करके वेद पढ़ाए, इसे शास्त्र में आया वेद में, इसलिए अब्राह्मण इसे नहीं कर सकता है, सरल कहा, इनको निश्चय हो गया जरूर ब्राह्मण हे सम्य समित लाओ, तुमको उपनयन करूंगा, तो उपनयन कर दिया। न सत्यादगा, क्योंकि सत्य से तुम विचलित नहीं हुए, ठीक ठीक सत्य बोल दिया, तो सत्य भाषण करना चाहे इसे इतने देख करके खुश हो गए आचार्य, सत्य से तुम विचलित ने सत्य भाषण किया, तुमको उपनयन करूंगा, तो हम उपनीय उपनयन किया, सब कुछ वेद का अध्यापन कराया, उसके बाद मंत्र में तो नहीं है, अध्यापन कराए करके उसमें टीका में स्वामी आनंदगिरि कहते कुछ अध्यापन करके, ऐसे नहीं कहने से बहुत लोग ऐसे कहते हैं उपनयन करके तुरंत कहा गो लेकर जाओ, किन्तु आनंदगिरि कहते आया कुछ दिन रहा, कुछ अध्ययन अध्यापन कराया, उसके बाद सेवा करने के लिए दिया उनको कृषा नाम अबला नाम चतुर्शता गा निराकृत वाच, कृष पतले दुर्बल, कृष होते पतला अबल होते दुर्बल, जो पतले हो गए दुर्बल होगा ऐसे कोई जरूरी है, मोटा भी दुर्बल हो सकता है, मोटा है किन्तु बल नहीं है, तो कोई पतला है किंतु बहुत बलवान है, ऐसे गो निकाल कर दिया जो कृश्य भी है और दुर्बल भी है, पतले भी है और दुर्बल बल है ना, ऐसे 400 गो लेकर के कहा निराकृत है। वाच कहा शिष्य से, हे स्वयं इमा अनुसंब्रज, इनके पीछे चलो, इनको चलाओ। कोई गुरु शिष्य को सेवा देते हैं, कुछ काम में लगाते हैं, तो जो अच्छे शिष्य तो खुश होता है गुरु जी ने कुछ सेवा दी,